बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जीवन है क्या, पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का।
घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी। यीशु बाहर लाया है,
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने और अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं जो नए नियम की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई है और पिछले अध्ययन में हमने स्वतंत्रता के विषय में देखा था जिसमें पौलुस कहता है, और सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हमारे हर काम से परमेश्वर का महिमान्वयन हो, दूसरे की भलाई हो, यही बात देखी थी। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पौलुस मार्गदर्शक या निर्देशन देता है। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज के अध्ययन के लिए हम निकाल लें पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसका 24 पद। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसका 24 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। प्रिय मित्रों, विश्वासियों को मसीह में महान स्वतंत्रता प्राप्त है, तथापि हम दूसरों की भलाई को ढूंढें या खोजें। अतः एक विश्वासी का जीवन स्वतंत्रता के अधीन और स्वतंत्रता द्वारा नियंत्रित न हो। स्वतंत्रता प्रेम द्वारा सीमित की जाती है। एक विश्वासी विधि विधान में नहीं बनता है, वह सख्त नियमों का दास नहीं है। उसे सीमित एवं बाध्य करने वाला केवल एक चीज है प्रेम। वह अन्यों पर पड़ने वाले अन्य प्रभाव के प्रति सतर्क रहता है। पौलुस यही विचार यहाँ पर प्रकट करता है। आइए हम आगे पढ़ें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक विश्वासी परमेश्वर की सृष्टि की सब वस्तुओं का आनंद उठा सकता है, उसकी सुंदरता और उसके फूल और फल। यह परमेश्वर की देन है जो मनुष्यों के लिए उसने दिया है। अब पौलुस एक व्यवहारिक सुझाव हमें देता है। वह कहता है कि जब आप भोजन पर आमंत्रित हो तो अपने सत्कारी से यह न पूछें कि यह मांस तो बहुत अच्छा है, आपने इसे कहां से खरीदा है, मेरा कसाई तो ऐसा अच्छा माल नहीं रखता है। मेरे मित्रों, इस प्रश्न पर आपके सत्कारी को कहने पर बाध्य होना पड़ेगा कि वह मंदिर की दुकान से लाया था। अतः उचित तो यह होगा कि आप ऐसा प्रश्न ही ना पूछें जिससे आपको तकलीफ हो। अब पौलुस एक व्यवहारिक उदाहरण हमें देता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो। जी हाँ, यदि आप किसी अविश्वासी के घर में आमंत्रित हैं तो बिना कोई प्रश्न पूछे आप खाना खाएं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 28 पद में आगे लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूरत की बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने के कारण और उसके विवेक के कारण ना खाओ। मेरे मित्रों, यह एक और सिद्धांत है जो पूर्ण रूपेण एक नया विषय है। पौलुस की राय में हमें सब कुछ प्रश्न किए बिना खा लेना चाहिए। अब मान लें कि वहां कोई और भी है जो आपको मांस खाते हुए देखता है तो सचेत करता है कि वह मांस मूर्ति को चढ़ाया हुआ है, तब आप वह मांस न खाएं। इसलिए नहीं कि वह गलत है, परंतु इसलिए कि उस मांस को खाने से आप उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाएंगे। अतः यहां मांस खाना या ना खाना आपके विवेक पर नहीं, उसके विवेक पर निर्भर करेगा। मेरे मित्रों, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उस मांस को ना खाएं, परंतु उस भाई की भलाई हेतु जिसका विवेक डावाडोल है आप उसके प्रति प्रेम के कारण मांस नहीं खाएंगे। यही संपूर्ण एवं मुख्य बात है। मैं एक उदाहरण देकर इस बात को समझाना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र किसी कलीसिया में प्रचार करने के लिए गया। वहाँ के एक पदाधिकारी ने उन्हें भोजन पर अर्थात अपने घर आमंत्रित किया। उसने उसे पीने के लिए पेय दिया। वह नहीं जानता था कि वह पेय क्या है। उसने उसे चखा तो उसमें अल्कोहल का या शराब का स्वाद आया। उसने उसे रख दिया। अब कलीसिया का यह पदाधिकारी, जो अति धर्मी जन नहीं था, विस्मय से पूछने लगा कि उस पेय अर्थात शराब का स्वाद उन्हें पसंद नहीं है क्या। प्रचारक ने कहा, मेरे विचार में यह बहुत स्वादिष्ट है, परंतु यह तो शराब है और मसीही होने के कारण मुझे इसको नहीं पीना चाहिए। कुछ समय वहां सन्नाटा रहा, परंतु उसने सत्य प्रकट कर ही दिया। मेरे विचार में उसने जो किया वह ठीक ही था। मेरे प्रियो, अब प्रश्न यह है कि क्या प्रचारक को उस प्राचीन की न्याय उस पेय को पीने का अधिकार था? जी हाँ, उसे था। इसमें दो राय नहीं है, परंतु उसकी एक गवाही थी जिसके कारण उसने वह पेय पीने से मना कर दिया। अधिकांश विश्वासी दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं क्योंकि वे नियमों के दास हैं। मित्रों, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए, परंतु यदि उनका उद्देश्य प्रेम है तो उनका व्यवहार भिन्न होगा। मसीही आचरण में दूसरे विश्वासी के लिए प्रेम मुख्य बात होना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 29 पद में, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। अब ध्यान दीजिए, मैं इन दुर्बल भाइयों के कारण सीमाओं में क्यों बांधा जाऊं। आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 30 पद में, यदि मैं धन्यवाद करके साक्षी होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। पौलुस पूछता है, किसी और के विवेक द्वारा मेरा न्याय किया जाना अनुचित नहीं। वह एक महान सिद्धांत द्वारा इसका उत्तर देता है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जी हाँ, पौलुस ने मसीही स्वतंत्रता के बारे में जो सिद्धांत प्रतिवादित किए हैं उनमें से एक सिद्धांत है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं, और सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। एक और सिद्धांत है, तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह परीक्षण प्रत्येक विश्वासी को अपने आचरण पर करना है, यह नहीं कि मैं यह करूं या नहीं या मैं वह करूं या नहीं, परंतु यह कि क्या मैं यह करूंगा तो परमेश्वर का महिमा होगा। दुर्भाग्य से कुछ विश्वासी परमेश्वर के महिमा हेतु आराधनालय में नहीं जाते हैं, वे किसी और कारण से वहां जाते हैं, संभवतः आलोचना करने या पीठ पीछे बुराई करने के लिए। यदि इस उद्देश्य आराधना में जाना हो तो उचित होगा कि घर ही में बैठे रहें। विश्वासी कुछ भी करें उसे परमेश्वर की महिमा हेतु ही करना है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो सिगरेट पीने का आदि था उसने अपने मित्र से कहा, सिगरेट पीने में क्या बुराई है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे कब कहता कि आप ना पिए, आप पीजिए, लेकिन आप परमेश्वर की महिमा के लिए पीजिए। जिस प्रकार आप सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं ऐसे ही सिगरेट के लिए भी धन्यवाद दीजिए और उसकी महिमा के लिए पीजिए। तब उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने पूछा क्यों, क्योंकि उसे मालूम था कि यह इसके लिए धन्यवाद नहीं दे सकता है, यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, कई बार हम सारी बातों को जानते हुए भी उस कार्य को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम करें सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करें, उसको धन्य कहें। हम पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 32 पद में आगे पढ़ते हैं, तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। जी हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पौलुस संपूर्ण संसार को तीन वर्गों में विभाजित करता है, यहूदी, अन्य जाति और परमेश्वर की कलीसिया। इन लोगों के विश्वास में अंतर था। एक उदाहरण है, यहूदी सुअर के मांस से घृणा करते हैं। विश्वासियों को मनुष्यों से प्रेम रखना चाहिए कि उनके काम किसी को ठेस न पहुंचाए। इसी प्रकार अन्य जातियों की भी अपनी मान्यताएं हैं। सबको प्रसन्न करना असंभव है, परंतु हमें अपने परिचितों को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए, न ही हमें परमेश्वर की कलीसिया को ठेस पहुंचाना है। कुछ युवक जो अपने अधिकारी से रुष्ट थे मेरे पास आकर के कहने लगे कि वे किसी कलीसिया की आराधना में गए तो उन्होंने उन्हें उनके वस्त्रों के कारण झिड़का है। वे मुझसे पूछने लगे कि क्या मेरे विचार में उस कलीसिया के लोग गलत नहीं। मैंने उनसे कहा कि मेरे विचार में वे दोनों ही गलत थे। कलीसिया इसलिए है कि सबके सामने किसी की आलोचना करना उचित नहीं, और ये युवक इसलिए भी गलत हैं कि उन्हें इसका बोध होना था कि उनके वस्त्र एवं बाल उस कलीसिया को ठोस पहुंचाएंगे। अतः दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शन नहीं था। लिखा है कि हमें न तो यहूदियों को न अन्य जातियों को और न ही परमेश्वर की कलीसिया को ठेस पहुंचाना है। मेरे मित्रों, यह संपूर्ण मानव जाति है। आज मनुष्य जाति के ये तीन वर्ग हैं, परंतु एक दिन परमेश्वर की कलीसिया इस संसार से कूच करके स्वर्ग में चली जाएगी। तब इस संसार में केवल यहूदी और अन्य जाति ही होंगे। उस समय के लिए परमेश्वर के पास एक अद्भुत कार्यक्रम है जो पूरा किया जाएगा। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, जैसा मैं भी सब कामों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। मित्रों, हमें मुख्य रूप से जो करना है वह परमेश्वर के महानवन के लिए करना है। तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक मसीही महिला चाहे झाड़ू लगाए चाहे बर्तन धोए मसीह की महिमा के लिए करे। जी हाँ, एक विश्वासी चाहे घास काटे चाहे गड्ढा खोदे मसीह के महिमा के लिए करे। चाहे आप कुछ भी करें यदि उससे मसीह का महिमा ना हो तो कुछ भी ना करें। जी हाँ, ऐसा जीवन संसार के लिए एक गवाही होता है कि भटके हुए उद्धार पाएं। मित्रों, यह अति महत्वपूर्ण बात है कि हम संसार को मार्ग दिखाएं, न कि स्वयं ही पथ भ्रष्ट हो जाएं। एक जोशीला युवक कुछ पर्चे लेकर के बांट रहा था। उसने एक मनुष्य को पर्चे दिए तो उसने लेने से अस्वीकार कर दिया। उसने पूछा कि वह क्या है। उस युवक ने कहा, यह एक पर्चा है। उस पुरुष ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, परंतु मैं एक काम कर सकता हूं कि आपके मार्ग पर ध्यान दूं। यह अधिक प्रभावी होता है। जी हाँ, मनुष्य हमारे मार्गों को अधिक उचित रूप से अंतर्ग्रहण कर पाएगा, अपेक्षा इसके कि उस पर्चे को पढ़ करके समझे। पर्चा बांटना एक उचित बात है, परंतु उसके साथ हमें उचित मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके एक पद में हम पढ़ते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मेरे मित्रों, यह एक ऐसी बात है जो हम में से बहुत कम लोग कह सकते हैं। मैं आपको इसमें नहीं रखता, परंतु निश्चय ही मैं इसका दावा करने की साहस नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नहीं मसीह के या पौलुस के अनुयायी हों। यह कैसी महान गवाही है जो पौलुस इस बात से करता है और देता है। मित्रों, हम अध्याय 11 में आते हैं और यहाँ पर आज हम देखेंगे स्त्रियों की वेशभूषा और प्रभु भोज के विषय में। मसीही स्वतंत्रता का विषय अब यहाँ पर समाप्त हो गया है, जो अध्याय 8 से अध्याय 11 उसके पद 1 तक था। अब पौलुस कुरिन्थ की कलिसिया को पत्र में पूछे गए अन्य प्रश्नों के उत्तर देता है। कोई तो अवश्य कहेगा, क्या परमेश्वर ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के भी उत्तर देगा, जैसे स्त्रियों की वेशभूषा? परमेश्वर एक स्त्री की वेशभूषा या पुरुष के बालों पर निश्चय ही ध्यान नहीं देगा। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर हमारे वस्त्रों, बालों को संवारने में रुचि रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, आपका नाई ही सब कुछ जानता है, यह विचार उचित नहीं है। परमेश्वर उससे अधिक जानता है। मेरे मित्रों, इस विषय में और अन्य संबंधित विषयों में कहने के लिए परमेश्वर के पास बहुत कुछ है। हमारे जीवन की सबसे गुप्त बात भी उनकी दृष्टि में है, जिसे आप नहीं छुपा सकते। स्त्री पुरुष के वस्त्रों से बढ़कर स्थान रखने वाली अन्य कोई बात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टीवी पर नहीं है। परमेश्वर के इनके बारे में भी कुछ और कहना है। आइए हम देखेंगे स्त्रियों की वेशभूषा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यापार मैंने तुम्हें सौंप दी है उन्हें धारण करते हो। मित्रों, ध्यान दीजिए, अब तक तो पौलुस कह रहा था मैं तुम्हें सराहता नहीं, परंतु अब वह कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ। वह उन्हें इसलिए सराहता है कि वे उसके लिए प्रार्थना करते थे और उसके लिए दान एकत्र करते थे और उसके निर्देशों का पालन करते थे। हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। मेरे मित्रों, मैं भली भांति समझता हूँ कि आज ऐसे अनेक पुरुष हैं जो मध्यवर्ती विचार पर ही बल देते हैं, स्त्री का सिर पुरुष है। परंतु मेरे मित्रों, जब आप इस संपूर्ण कथन को एक साथ पढ़ेंगे, तब इस विषय दृष्टिकोण से मुक्ति पा लेंगे। पौलुस यहाँ एक और महान सिद्धांत प्रतिपादित करता है, यह अव्यवस्था निवारण व्यवस्था का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, यह सिद्धांत घर एवं कलिसिया दोनों जगहों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्षों पूर्व की बात है कि एक पादरी साहब अपनी कलिसिया में समस्याओं का सामना कर रहा था। अतः मैंने उससे पूछा कि उसकी समस्या वास्तव में क्या थी। उसकी समस्या थी कि कलिसिया में सब अगुए होना चाहते थे। आज तो कलिसियाओं में अगुवाई प्रशिक्षण सत्र होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाइबल में कहीं इसका प्रावधान है? कुछ संस्थाएं युवाओं को सार्वजनिक वक्ता होने के लिए प्रशिक्षण के लिए विशेष करके स्थापित करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, चुपचाप रहने का प्रयत्न करो। काश हम भी उसी बात पर बल दे सकें जिस बात पर बाइबल बल देती है। मेरे मित्रों, हमें अगुवाई के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो विश्वासियों की नाई व्यवहार करे और एक सच्चा जीवन जिए। यहाँ मुख्य शब्द है सिर, हर एक पुरुष का सिर मसीह और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जी हाँ, ध्यान रखें, शरीर में सिर वह अंग है जो संपूर्ण देह को निर्देश देता है। इस पद में यह नहीं लिखा गया है कि प्रत्येक विश्वासी का सिर मसीह है। यहाँ पुरुष एक सामान्य शब्द है। लिखा है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। मसीह को हर एक पुरुष का सिर होना एक सामान्य एवं उचित क्रम है। यदि कोई मनुष्य मसीह के स्वामित्व में न हो तो वह सामान्य पुरुष नहीं है। कुछ मनुष्य का स्वामी नशा होता है तो कुछ की भावनाएं उसका स्वामी होती है, तो अधिकांश जनों का स्वामी उनका शरीर है। हर एक मनुष्य को मसीह के स्वामित्व के अधीन होना है। संत अगस्तीन ने कहा, मनुष्य का मन जब तक तुझ में विश्राम ना पाए वह परेशान ही रहता है। जी हाँ, सच है कि मनुष्य जब तक मसीह को अपना सिर न बना ले वह परेशान ही रहता है। परमेश्वर की निमित्त बड़े बड़े काम करने वालों ने यही किया था। मैं मार्टिन लूथर, बिल्बर फोर्स, अस्टिन आदि के बारे में सोचता हूँ कि मसीह को अपना सिर बनाने तक वे लंपट ही थे। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु को नहीं जाने तक वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे। आज मैं किसी मनुष्य के लिए सुनता हूँ, वह एक मसीही जन है, क्या वह मसीह के स्वामित्व के अधीन है? यही एक महत्वपूर्ण बात है और पौलुस इसी बात पर बल देता है। आगे लिखा है कि स्त्री का सिर पुरुष है। इसका अभिप्राय विवाह से है, जिसमें स्त्री पुरुष के प्रति व्यवहार करेगी। विवाह में स्त्री का पुरुष के अधीन होना स्वाभाविक है। यदि स्त्री अपने पति का सम्मान ना करे तो उसे न तो उसके साथ रहना है और न ही उसे विवाह करना है। एक सच्ची स्त्री जिससे प्रेम करती है उसे जी और जान से स्वीकार करती है। मेरे मित्रों, दूसरी ओर उस पुरुष को ऐसा व्यक्ति होना है जो उसके लिए अपनी जान दे दे। इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस लिखता है, हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। डॉक्टर जी कैम्बेल मॉर्गन अपने एक पारिवारिक मित्र के बारे में बताते हैं जो बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। वह एक प्रभावी व्यक्तित्व को रखती थी और विशिष्ट मनुष्य थी। वह अविवाहित थी और एक दिन उन्होंने उससे स्पष्ट पूछा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? उसका उत्तर था, मुझे ऐसा पुरुष नहीं मिला जो मुझ पर स्वामित्व प्रकट करे। इस कारण उसने विवाह नहीं किया। क्या मैं कह सकता हूँ कि यदि एक स्त्री को ऐसा पुरुष न मिले जो उस पर स्वामित्व प्रकट करे तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए? यदि वह अन्य किसी पुरुष से विवाह कर ले तो सदा के लिए परेशानी में पड़ जाएगी। आगे हम देखते हैं, मसीह का सिर परमेश्वर है। मेरे मित्रों, यह एक महान भेद की बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 30 पद में ईश्वर ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। दूसरी ओर उसने यह भी कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 28 पद में, पिता मुझसे बड़ा है। मुक्ति कार्य में उसने स्वेच्छा से निम्न स्तर को ग्रहण किया और स्वर्गदूतों से भी छोटा किया गया। वह इस पृथ्वी पर दीनता के मार्ग पर चला। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पौलुस हमें चिताता है एवं बताता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मेरे मित्रों, अब पौलुस कुरिन्थ की परिस्थिति में सिर होने के सिद्धांत को व्यवहारिक बनाएगा। कुरिन्थ नगर में यदि स्त्री ने पर्दा नहीं किया है तो इसका अर्थ था कि वह एक वेश्या है। आज आपके समाज में ऐसा नहीं होगा, परंतु यहाँ जो सिद्धांत दिया गया है वह आज भी लागू होता है। मेरे मित्रों, आज हम इस अध्ययन में बहुत सारे मुख्य बातों को देखते हैं जो पौलुस अपने अनुभव के द्वारा उस कलीसिया के विषय में हमें बताते हैं। इतना ही नहीं, आज हमने इस बात को भी देखा है कि स्त्री और पुरुष अपने जीवन में किस प्रकार के मायने रखते हैं, और सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मसीह यीशु कलीसिया का सिर है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। पति और पत्नी और कलीसिया, ये सब महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु के स्वभाव में चलें। जिसने अपने आप को मनुष्य की समानता में होने के लिए शून्य कर दिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। मित्रों, अपने अनुभव, अपने आशीष आप हमें पत्र के माध्यम से या फोन के द्वारा अवश्य ही बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपके साथ परमेश्वर को हम धन्य कहने पाए। अपने अन्य मित्रों को भी बताएं, ताकि इस अध्ययन के द्वारा वे अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु फिर से एक बार हम सबको इस अध्ययन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। अगले अध्ययन में हम मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, प्रभु में बने रहें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद।